हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। युद्ध के हालातों के बीच आज यूक्रेन जाएंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और उसके बाद पोलैंड से भी अहम बातचीत करेंगे। आज 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। अभी रूस यूक्रेन युद्ध का माहौल और भी ज्यादा तेज उग्र चल रहा। इस बीच विदेश मंत्री यूक्रेन के दिग्गज नेताओं से और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के साथ बैठक करके बातचीत भी करेंगे। वहीं खबर है, अभिभावक माता पिता जरा ध्यान दें, पंजाब में आज नहीं चलेगी स्कूल वैन। नए नियमों के विरोध में स्कूल वैन संचालकों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार ने इससे जुड़े कुछ नए लाइसेंस नियम जारी किए, जिसके तहत 45 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग, फीस बढ़ चुकी है और भारी जुर्माना वगैरह। तो इसके विरोध में पंजाब के स्कूल वैन संचालक आज हड़ताल करेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, कल जन्माष्टमी का पर्व रहेगा, तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आज 3 सितंबर को ही यूपी मथुरा पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। तो जन्माष्टमी के पर्व के चलते मथुरा में 3 से 5 सितंबर तक यातायात भी प्रतिबंधित रहेगा, कई सारे इलाकों पर ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। और खबर है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी आज 3 सितंबर को फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा कि आज 3 सितंबर को अगले 16 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सौंपी गई अब राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की जिम्मेदारी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी, तो अब ये राम मंदिर के पहले सीईओ बने हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। तो ये तो सीईओ होंगे, और इनके अलावा अब चंपत राय की जगह गोविंद देव गिरी महासचिव बनाए गए, और भी ट्रस्ट में 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो ये नए महासचिव बने, गोविंद देव गिरी, इन्होंने 17 साल की उम्र में पहली कथा की थी। इससे पहले कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली थी इनको। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब तक ट्रस्ट ने ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। और अगली खबर देखिए, हाल ही में जो भारत में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए, तो उन आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने भी आरोपों को तर्कहीन बताया। तो देखिए, जीडीपी विवाद मामले पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि आलोचना करने वाले बेरोजगार हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी इन आंकड़ों पर सवाल उठाए थे, जिनमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। तो अगर देश की जीडीपी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही, तो कहीं ना कहीं सवाल ये होते हैं कि देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, राइट। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना कि एमएसएमई ग्लोबल ग्रोथ का रास्ता बना। रक्षा मंत्री बोले कि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड हो मैन्युफैक्चरिंग का आधार। वहीं गोल्ड तस्करी पर बड़ी खबर देखिए, केरल एयरपोर्ट पर 1 करोड़ का सोना जब्त हुआ। 8 महीने के बच्चे के डायपर में भी छिपा रखा था 0.5 किलो गोल्ड, और बाकी सोना बच्चे के पिता ने अपने कपड़ों में छिपा कर रखा था। और खबर है, हाल ही में जो राजधानी दिल्ली में एक बस में गैंगरेप की घटना देखने को मिली, उस केस पर खबर आ रही कि पीड़ित और आरोपियों के फिंगरप्रिंट बस से मिल चुके हैं। ड्राइवर और कंडक्टर के कपड़े भी जब्त किए गए। चलती बस में एक 16 साल की छात्रा से गैंगरेप किया था बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने। तो अब पॉक्सो कानून के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा कि सीता का चरित्र भगवान राम से भी बड़ा है। वो बोले कि महिलाएं संसद तक नेतृत्व संभालें, सरकार पूरा साथ देगी। और ये एक तस्वीर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने अपना 40,000 का चश्मा सनग्लास उतार कर एक बुजुर्ग महिला को पहनाया। तो महिला बोले कि हीरो आज हमारे सामने खड़ा था। मुख्यमंत्री यहां मेट्टूर डैम के गेट खोलने पहुंचे थे। इस दरमियान उन्होंने गांव वासियों से बातें चीतें भी की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस साल की चारधाम यात्रा पर भी अपडेट है कि पिछले महीने अगस्त में 2,31,000 यात्री श्रद्धालु पहुंचे, जो कि संख्या पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रही है। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 1,25,000 श्रद्धालु आए। और आंध्र प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, एंटी मलेरिया की दवा देने से एक बच्ची की मौत हो गई। जहां ये बच्ची मरी, यहां 52 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। मलेरिया की जांच के बाद बांटी गई थी मेडिसिन। आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले का ये मामला है। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के आदेश भी दिए हैं। और वहीं खबर देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। भारत से वो अपने साथ कंबल और राशन लेकर गए लोगों की मदद के लिए, और बोले कि अगले कई महीनों तक मदद जारी रखेंगे। वो अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे हैं। सोनू सूद ने वाकई में कोरोना के टाइम पर भी लोगों की काफी मदद की थी, आपको पता होगा। वहीं खबर है दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया, तो इस घटना की भारत ने निंदा की। 100 साल पुराने मंदिर को हटाकर यहां मदरसा बनाने का आरोप है। पाकिस्तान से इस्लामाबाद बोला कि बारिश की वजह से ये इमारत गिरी, लेकिन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर आपत्ति जताई गई। भारत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और वहीं खबर है दोस्तों, आप नेक्स्ट टाइम आप हवाई यात्रा करोगे तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू में मेंबर्स की यूनिफॉर्म आपको नए लुक में नजर आएगी। केले के रेशों से बने फैब्रिक से कपड़े तैयार किए गए हैं। इस तरह की यूनिफॉर्म पहनेंगे अब एयर इंडिया के क्रू मेंबर। 1 सितंबर से ये नई यूनिफॉर्म लागू हो चुकी है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूर प्रोटेस्ट पर बड़ी खबर आ रही की छात्रा आकृति चौधरी की एनएसए हिरासत रद्द हुई। हाईकोर्ट बोला की सरकार की कहानी मनगढ़ंत है, डीएम सैलरी से 5 लाख का मुआवजा दें। नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के मामले में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। 13 अप्रैल को जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तो इस मामले में छात्रा पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को आरोपों से बरी कर दिया है। वहीं देखिए, पंजाब सरकार डीए यानी महंगाई भत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि 14,000 करोड़ का महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है, हम पहले से ही केंद्र से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। मुलाजिम बोले कि ये फिर मुंह की खाएंगे। पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को डीए जारी करने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी सीधा सीधा मना कर दिया है। वहीं खेल जगत से खबर है, भारत में होगी पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी। अगले साल 2027 में 14 से 28 फरवरी तक मुंबई और वडोदरा में ये टूर्नामेंट होगा और भारत ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और खबर है, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली। नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। वहीं यूपी की योगी सरकार की नई नीति पर रिपोर्ट सामने आ रही कि महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश बना देश का तीसरा सबसे बड़ा आबकारी निर्यातक। यूपी की योगी सरकार की नई आबकारी नीति से शराब के एक्सपोर्ट में 45% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे यूपी सरकार की कमाई भी बढ़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश के 62,000 शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी एग्जाम आयोजित किया जाएगा और यूपी सरकार का कहना कि जल्दी नई एग्जाम डेट जारी की जाएगी। 2.5 घंटे में 150 सवाल हल करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के सेवारत करीब 62,000 शिक्षकों के लिए ये स्पेशल टीईटी कराने का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाखों टीचर्स की नौकरी पर संकट छाया, तो उन्हें टीईटी एग्जाम देना कंपलसरी है। और वहीं खबर देखिए, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच अब वापस सीबीआई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया सीबीआई को। वैसे तो ये मामला काफी साल पुराना है, 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्टर की मौत हुई थी, उससे ठीक 6 दिन पहले 14वीं मंजिल से ये गिर गई थी। तो ये कोई हादसा था या सोची समझी साजिश थी या खुद इन्होंने अपनी जान दी, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंप दिया है। 8 जून 2020 की ये घटना थी और इस घटना के 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने मुंबई के बांद्रा में स्थित अपार्टमेंट में जान दे दी थी, राइट। तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने समेत ये 4 आदेश जारी किए हैं। वहीं देखिए, बॉलीवुड से खबर, फिल्म हनुमान अंश ने 26वें दिन भी 8.5 करोड़ रुपए कमाए। 2 करोड़ में बनी फिल्म ने 500 और 1000 करोड़ की टॉक्सिक फिल्मों को भी पीछे कर दिया, क्योंकि इसका बजट बहुत कम रहा और कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। अब तक 54 करोड़ तक के कलेक्शन को पार कर चुकी है फिल्म। और जेन जी युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जेन जी नौकरी के लिए योग्य नहीं है। 37% कंपनियों के बॉस जो है वो ऐसा मानते हैं और इसीलिए नए ग्रेजुएट्स की जगह रोबोट चुनने के लिए तैयार है। और इसके पीछे वजह यह कि जेन जी युवाओं में कम्युनिकेशन और पेशेवर स्किल की कमी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड एम्प्लॉयर्स के सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि मतलब आजकल के कंपनी मालिक जो है वो मशीनों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं युवाओं के बजाय। देखिए आप, AI रोबोट्स को काम पर रखने के लिए राजी है। और टेक जगत से एक और अच्छी खबर आ रही कि बोलते ही टेक्स्ट में बदल जाएगी आवाज। फेसबुक इंस्टाग्राम वाली मेटा कंपनी ने लॉन्च किया म्यूज वॉइस ट्रांसक्राइब फीचर। हिंदी समेत 5 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा इसमें आपको। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी 5 प्रमुख भारतीय भाषाएं शामिल होंगी, जो आप बोलकर टेक्स्ट कन्वर्ट के रूप में यूज कर पाएंगे, है ना। वहीं खबर है, झारखंड में अभियंताओं की पदोन्नति यानी प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। अब और बड़ी खबर देखिए, 5 नामी ब्रांड्स के घी, चाय और मिर्च पाउडर पर पूरे राजस्थान में बैन लगा दिया गया है और 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें नंदी गाय का घी, रतवाड़ी चाय, GS गोल्ड लाल मिर्च और KDP कृष्णा व सारस घी के प्रदर्शन, बिक्री व वितरण पर पूरे प्रदेश में 2 महीने की रोक रहेगी। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में इनके लाइसेंस वगैरह भी रद्द कर दिए गए। FSSAI की तरफ से ये कार्रवाई की गई, क्योंकि ये मानकों में क्वालिटी में सरकार के नियमों के मुताबिक खरे नहीं उतरे हैं ऐसा। वहीं खबर है, यूके, कनाडा और सिंगापुर में भी देखा जा सकेगा अब सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 20। जल्दी इसको वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम किया जाएगा। और खबर देखिए, पाकिस्तान का विश्व के नक्शे पर नामो निशान तक नहीं रहेगा। ये चेतावनी और बयान दिया है महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नामो निशान तक मिटा देंगे। और ये बयान इसलिए दिया गया क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा पाकिस्तान पीएमओ की ओर से जो एससीओ ग्रुप की तस्वीर शेयर की गई जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हटा दिया गया था। तो इस तस्वीर को लेकर अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। और इसी बीच ये महाराष्ट्र डिप्टी सीएम का बयान भी देखने को मिला। पीएम मोदी के अलावा भी ईरानी राष्ट्रपति समेत कई नेताओं को हटा दिया था पाकिस्तान ने। चलिए दोस्तों खबर है, अब हमारा देश भारत और वर्ल्ड बैंक दोनों देशों के बीच साझेदारी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। पर्यटन और डिजिटल हब पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। $1.5 अरब के फाइनेंसिंग और एमएसएमई सहायता का स्वागत किया। अभी G20 समिट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी गई हुई है विदेश दौरे पर। इस दरमियान वर्ल्ड बैंक और हमारे देश इंडिया के बीच ये अहम समझौते हुए हैं। और वहीं भारत के GDP आंकड़ों पर जो चर्चा का माहौल चल रहा है, इस बीच विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा भी बोले कि भारत की ग्रोथ में अभी तो और तेजी की क्षमता है, 8% से भी ज्यादा बढ़ सकती है भारत की ऑल ओवर अर्थव्यवस्था। ये भी उनका अच्छा बयान देखने को मिला। और अगली खबर देखिए, लैब से निकलकर अब हर हाथ में पहुंचेगा AI। भारत में IIT खड़गपुर के 75 साल पूरे होने के मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ये बयान दिया और भारत में भविष्य को लेकर AI का विजन साझा किया। वो बोले कि अगले 5 सालों में डॉक्टर, किसानों और उद्यमियों के भी हाथों में होगा AI, जन जन के हाथों में पहुंचेगा AI। वहीं खबर है, सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके। भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी गुहार लगाई क्योंकि भारत द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का जो फैसला खारिज कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने रचनात्मक बातचीत की अपील की है भारत के साथ कि हम इस मसले को बातचीत करके समझाएं ऐसा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जल उत्सव को बनाएं जन आंदोलन। पीएम मोदी ने कहा कि हर पानी की बूंद बचाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाएं। पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में शहरीकरण और बढ़ती आबादी के बीच जल सुरक्षा को लेकर AI और आधुनिक जल बचत तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया है। वहीं देखिए विधानसभा में गूंजा ये मुद्दा, मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर 2028 तक पूरी होगी बाड़बंदी। मणिपुर सरकार ने म्यांमार सीमा पर तकरीबन 398 किलोमीटर लंबे दायरे में बाढ़ लगाने का काम पूरा कर लिया और बाकी बचे हिस्से पर भी 2028 तक बाढ़ कंप्लीट हो जाएगी ऐसा। और खबर है, अन्ना हजारे की तबीयत में अब सुधार हुआ, 2 दिन और अस्पताल में रहेंगे वो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हर नीतिगत फैसले में अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की सलाह लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ये निर्देश भी जारी किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना कि राज्य बार काउंसिल चुनाव के बाद BCI का भी पुनर्गठन होगा, इस बारे में भी निर्देश जारी किए गए। और खबर है, तमिलनाडु राज्य में विधानसभा और सचिवालय की भी जगह बदलेगी, फोर्ट सेंट जॉर्ज से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और मणिपुर विधानसभा में एक और प्रस्ताव पारित हुआ, जनगणना से पहले NRC कानून लागू किया जाए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट करने की मांग की गई मणिपुर विधानसभा में। इसको लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। और SIR अभियान पर भी अपडेट आ रहा, हरियाणा उत्तराखंड राज्य समेत कई राज्यों में बड़ी अंतिम मतदाता सूची की तारीख, आंध्र प्रदेश हरियाणा पंजाब वगैरह में भी 11 दिन की बढ़ोतरी की गई है। तो अब अंतिम सूची जारी करने की जो नई तारीखें होगी वो क्या होगी देख सकते हैं इस बारे में डिटेल भी। और नकली दवाइयों पर बड़ी खबर आ रही, गुजरात में नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्यवाही की गई, 50 दवा कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। वहीं राजस्थान सरकार का प्लान देखिए, अब मानसिक तनाव और इस तरह की घटनाओं पर बड़ा प्रहार यानी बड़ी कार्यवाही देखने को मिलेगी। राजस्थान में संभाग स्तर पर बनेंगे मेंटल हेल्थ बोर्ड और नशा मुक्ति केंद्रों का भी अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक के बाद ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा राजस्थान की भजन लाल सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की, राज्य में 1 लाख लोगों को प्लॉट देगी राजस्थान सरकार, 24 घंटे शहरों में बिजली मिलेगी। आने वाले निकाय चुनाव के लिए BJP ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र की कुछ प्रमुख घोषणाएं देखिए, शहरी लोगों के लिए आवासीय भूखंड और घरेलू PNG वगैरह को लेकर गारंटी दी है राजस्थान सरकार ने। राज्य में फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे अलग अलग जोन में, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी, खराब सड़कों और सीवरेज लाइनों की भी जांच होगी, शहरों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, EV इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, राजस्थान में निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर राजस्थान की भजन लाल सरकार की तरफ से ये अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया। और भजन लाल सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, राजस्थान में खुलेंगे 4 नए जिला सहकारी बैंक भी और इसके लिए सरकार ने 31 करोड़ 68 लाख का बजट भी मंजूर कर दिया है। प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर और डूंगरपुर में ये 4 नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए जाएंगे ऐसा। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाए। गहलोत बोले कि कम से कम इतनी तो पेंशन होनी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार बनने के बाद अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है। तो उन्होंने ये मांग की और मुद्दा भी उठाया है। और भारत की आर्थिक ग्रोथ पर एक और अच्छी खुशखबरी आ रही है, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी भारत की रेटिंग को बढ़ाकर ए स्टेबल की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी आने वाले समय में भारत की जीडीपी विकास दर और अच्छी रह सकती है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो नेपाल में बाढ़ से तबाही मची हुई है, इस पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में बोले कि भारत को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सही समय पर पड़ोसी देशों ने हमें मदद पहुंचाई। पिछले 7 दिन में नेपाल की इस त्रासदी में अब तक 1200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ और राहत बचाव कार्यों में मदद के लिए संसद में भारत और चीन को धन्यवाद भी दिया। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या का आंकड़ा 1200 से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। और नेपाल की इस बाढ़ में मलबा कितना बहकर आया, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इतना मलबा कि 22000 ट्रक भर जाए ना तो भी सफाई नहीं होगी। यानी नेपाल में इस पूरे मलबे को साफ करने में कई सालों का समय लग जाएगा। यूएनडीपी की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और ये एक महिला हेलीकॉप्टर कैप्टन की दास्तान देखिए, जो नेपाल की पहली महिला हेलीकॉप्टर कैप्टन है। इस बाढ़ के हालातों में सैकड़ों लोगों की जान बचा रही है। नाम है इनका प्रिया अधिकारी, जिन्होंने साहस की एक नई मिसाल पेश की है। सैल्यूट वाकई में इनकी वीरता को। बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के बीच इन्होंने काफी मदद की है। चलिए अब देखिए भारत में कुछ अलग अलग राज्यों में मौसमी स्थितियां क्या चल रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली, 12 लोगों की मौतें हो गई। बिहार में भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे एक बार फिर से धस गया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी 400 दुकानें डूबी। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही है। देखिए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के तहसील में भी पानी भरा, स्कूलों में आज छुट्टियां घोषित की गई। कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है और नदियां भी उफान पर चल रही, इस वजह से बाढ़ का पानी गांवों में आ गया, गांवों में मगरमच्छ घुस गए। यूपी के 8 शहरों में आज स्कूल भी बंद रहेंगे, 15 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। ये बाढ़ के ड्रोन फुटेज और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस बीच आज 3 सितंबर को मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए, भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक दीवार गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं देखिए हरियाणा में भी 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ, पिछले महीने अगस्त में 3 साल में सबसे कम 7% तक कम बारिश देखने को मिली हरियाणा में। और राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश हुई। 2 दिन बाद राजस्थान के 4 संभागों में तेज बरसात का अलर्ट है। सितंबर का महीना राजस्थान में मिला जुला रहेगा मौसम के हिसाब से। अगले 72 घंटों में राजस्थान में कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। देख सकते हैं आप, आज 3 सितंबर को लगभग पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा और कल 4 तारीख को भी आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, 17 बस स्टैंड समेत कई इलाके डूब गए। आज बरगी के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जाएगा, बरगी बांध के ये गेट खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने भयानक हालात चल रहे हैं। इस बीच आज 3 सितंबर को मध्य प्रदेश के मध्य इलाकों वाले जिलों में अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला कल 4 और परसों 5 तारीख तक भी मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए, बेतिया में गंडक नदी में कटाव देखने को मिला, जिसके चलते देख सकते हैं आप, एक तो पूरा घर ही नदी में समा गया। बिहार की राजधानी पटना में भी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही गंगा नदी। कैमूर के वाटरफॉल में भी उफान देखने को मिला। बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, कई जिलों में ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच आज भी बिहार के इन 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। भले ही कई जिलों में बाढ़ चल रही हो, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इस साल के मानसून के अब तक के 82 दिनों में बिहार में 40% तक कम बारिश हुई। तो अलनीनो की वजह से कई जगहों पर किसानों की फसलों के लिए भी पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई है और इस बार तो 12 दिन पहले ही मानसून विदा ले लेगा, ये मौसम विभाग का अपडेट आ रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए, देहरादून में 2 बच्चों की मौत हो गई, रामनगर में एक स्कूटी बह गई, गर्जिया मंदिर में एंट्री बंद की गई, अल्मोड़ा में एक मकान भी गिर गया, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां चल रही है। इस बीच अगले 3 दिन 3, 4 और 5 सितंबर को उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जिस जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 12 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। बिलासपुर में चट्टान गिरने से गाय की मौत हो गई, नदी में फंसे दो व्यक्तियों का भी रेस्क्यू किया गया। तो ये तो कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां रही। बाकी मौसम विभाग का कहना है कि रेड अलर्ट की चेतावनी किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। ऑल ओवर अगले 2 दिन 3 और 4 सितंबर को देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब बारिश और मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 141 अंक नीचे आया, क्योंकि ईरान ने फिर से अमेरिका पर हमला किया तो उसका असर भारतीय मार्केट में भी देखने को मिला। वहीं खबर है एप्पल के जो नए सीईओ बने टर्नस, उनको 600 करोड़ का पैकेज देगी कंपनी। टिम कुक की जगह अब ये होंगे नए सीईओ। और राजस्थान में सिगवर्क कंपनी 630 करोड़ का निवेश करेगी, ये पैकेजिंग क्षेत्र की वैश्विक कंपनी है। वहीं हरियाणा का SGST संग्रह 29% बढ़कर 24,500 करोड़ रुपए रहा। और केंद्र सरकार ने चीनी स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल की। वहीं महंगाई पर रिपोर्ट आ रही कि एक ही दिन में 5% तक बढ़ी तेल की कीमत। क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों में ये भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो त्योहारी सीजन से पहले बैंक लोन वगैरह भी महंगे हो सकते हैं और लॉजिस्टिक्स बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है ऐसा। वहीं देखिए, स्टॉक ब्रोकर कंपनी जीरोधा संभालेगी अब आईपीओ का काम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मर्चेंट बैंकर बनने का रास्ता साफ किया। और विदेशी निवेशकों पर ड्रैगन यानी चाइना ने कुछ यूं पाबंदी लगाई। 30 साल पुराना नियम बदल दिया, अब डिविडेंड पर देना होगा 20% टैक्स। चीन ने विदेशी निवेशकों को यह बड़ा झटका दिया। वहीं भारत के तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया। 5 रुपए में जमा होगा फोन। परिसर में सेल्फी लेने और रील बनाने पर पाबंदी रहेगी और VIPs पर भी ये नियम लागू होंगे। तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरों में आसपास कई भाषाओं में इस तरह के नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं। और एक सलाह देखिए कि होम लोन चुकाने के बाद भी ये 5 पेपर कभी फेंके नहीं, जिनमें लोन एग्रीमेंट, NOC, नो ड्यूज सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें, ताकि कभी प्रॉपर्टी बेचते हो और ट्रांसफर करते हो तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। तो होम लोन जैसे आपका खत्म होता है, बैंक से ये 5 पेपर्स जरूर वापस लें और लोन क्लोजर के समय तुरंत ये 3 काम भी करें, कभी भी प्रॉपर्टी पर लोन वगैरह लेते हो तो, ठीक है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रवासी भारतीयों ने भारत में जमा किए $127 अरब। खुद रिजर्व बैंक की तरफ से डेटा जारी किए गए। और भारतीय रेलवे का एक और बड़ा फैसला देखिए, 45 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बने, जिससे लागत घटेगी, 3600 करोड़ का निवेश आएगा। वित्त वर्ष 2027-28 तक ये सभी टर्मिनल शुरू कर दिए जाएंगे ऐसा। अच्छा, रेल यात्रियों से जुड़े भी कुछ अपडेट आ रहे हैं। देखिए, अनारक्षित टिकट का स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होगा। रेलवे की तरफ से नया नियम जारी किया गया, जिसके तहत अगर आप रेलवे टिकट का फोन में स्क्रीनशॉट दिखाते हो तो अब काम नहीं चलेगा। यानी यात्री को जांच के समय वही मोबाइल दिखाना होगा जिससे टिकट बुक किया गया। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से टिकट बुक किया है तो व्हाट्सएप वगैरह पर भेजा गया स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होगा। रेलवे की तरफ से इन नियमों को लेकर ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी आपने रेलवे टिकट बुक किया, आपकी पहली ट्रेन छूट गई, तो क्या उस टिकट पर आप अगली ट्रेन में सफर कर सकते हैं या उस टिकट का पैसा डूब जाएगा या मुआवजा मिलेगा, तो इसको लेकर क्या नियम है समझिए। यदि पहली ट्रेन लेट होने से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो भारतीय रेलवे रिफंड का प्रावधान भी करता है, बशर्त टिकट बुक करते समय कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग का विकल्प आपने चुना हो और PNR नंबर लिंक कर रखे हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। 3 घंटे की समय सीमा भी मिल जाती है, आप अगली ट्रेन वगैरह पकड़ सकते हैं ऐसा, और रिफंड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो टिकट बुक करते समय आप अगर कभी लेट वगैरह हो सकते हो तो कनेक्टिंग ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन टिक कर दें, चेक मार्क कर दें उसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, देखिए आप अगली खबर। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अब मेटर्निटी लीव के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत 2 प्रसूति अवकाश के बीच 2 साल के अनिवार्य अंतर की समय सीमा को खत्म कर दिया है, जिससे पात्र महिला कर्मचारी बिना शर्त के छुट्टी वगैरह ले सकेंगे ना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा। खुद उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए। अभी भी 37 मरीज और सक्रिय हैं एक ही दिन में। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगी स्वाइन फ्लू की जांच। टोटल लगभग 685 मामले सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी और उपचार व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। झारखंड में भी देखिए, स्वाइन फ्लू का दायरा बढ़ा। 38 से ज्यादा संक्रमित आए। रिम्स में 36 सैंपल की जांच में 12 पॉजिटिव पाए गए। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बड़ा हादसा हो गया। सीधी मार्ग पर बस और बलकर में भिड़ंत हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में सेना की बोट डूबी, 2 जवान लापता हैं। 15 किलोमीटर तक उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। प्रैक्टिस के दरमियान यह हादसा हुआ, तो देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान एक जवान का शव मिल गया, लेकिन दूसरा अभी भी लापता बताया जा रहा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हादसे पर बड़ी खबर देखिए, मिस्र में भीषण बस हादसा हो गया, बस पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग घायल हो गए। और ईरान में भी सरकार समर्थक रैली में एक तेज रफ्तार कार घुसी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वैसे ईरान अमेरिका दोनों देशों के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ गई है। देखिए 2 दिन बाद अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, 68 लोग घायल हो गए। जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन और बहरीन के अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरानी स्ट्राइक किए। तो ईरान पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि अब समझौते में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हॉर्मुज रूट पर अमेरिका का फुल कंट्रोल है। और ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि हॉर्मुज का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर दें, हॉर्मुज स्ट्रेट की बजाय, इससे यह अमेरिका की तरह होट हो जाएगा। पहले गल्फ ऑफ अमेरिका, अब ट्रंप स्ट्रेट। डोनाल्ड ट्रंप कई जगहों के नाम बदलते जा रहे हैं और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद और तनाव का माहौल और बढ़ रहा है। और इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को मजबूत करने के लिए वॉर फाइटर चुना। वहीं अमेरिका में नागरिकता को लेकर भी ट्रंप सरकार नियम बदलने जा रही। अब अमेरिका में जन्म लेते ही नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप का नया प्लान है कि माता पिता को भी नागरिकता का सबूत देना होगा, तभी नागरिकता मिल पाएगी ऐसा। और इस बीच खबर देखिए, 5,000 अमेरिकी सैनिक थाईलैंड पहुंचे, 5 दिन यहां छुट्टियां मनाएंगे, लेकिन इस तरह के इलाकों में जाने पर रोक रहेगी। थाईलैंड के पटाया में 5,000 अमेरिकी सैनिक छुट्टियां मनाएंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तकनीक दे रहा है रूस। इस प्रोजेक्ट पर 3 साल तक काम चला, जिसका अमेरिकी जहाजों पर हमले में भी इस्तेमाल होगा। वहीं देखिए, इधर इजराइल का कहना है कि अगर अमेरिका तैयार हुआ तो गाजा खाली करा देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास हथियार नहीं छोड़ रहा, लोगों को हटाकर ही समस्या सुलझेगी। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि दूर बैठा दुश्मन भी अब खौफ खाएगा। भारत ने खंग तक 243 का सफल परीक्षण कर लिया है। स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है ये, जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। और भारतीय वायुसेना ने हमारे देश में विकसित इस तरह के लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण कर लिया, जिससे इंडियन आर्मी की पावर और बढ़ेगी। वहीं खबर है, उबर कंपनी भी 3400 कर्मचारियों की छटनी करेगी। ग्लोबल वर्कफोर्स में 10% तक की कटौती की तैयारी कर रही है। भारत में भी कई लोगों की नौकरी जाएगी। और अगली खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार राज्य के 47 पुल और 55 राज्य पथों पर अब टोल टैक्स भी लगेगा। वहीं बिहार में स्कूल लाइब्रेरियन की बहाली से पहले होगी अब पात्रता परीक्षा। 1 अक्टूबर से इसके लिए भी आवेदन शुरू हो जाएंगे, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा बिहार में 30 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए खुशखबरी है, अब घर बैठे 6 तरह की गंभीर बीमारियों की फ्री जाँच होगी। मैंने आपको बताया था ना, बिहार सरकार द्वारा जीत एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार नाम से नया अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अब सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक घर घर जाकर 6 तरह की गंभीर बीमारियों की जांच फ्री में करेंगे, जिसमें कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज वगैरह ये बीमारियां शामिल हैं। और हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अचानक नहीं जाती है जान। कई बार आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज वगैरह देखे होंगे, जिसमें हम देखते हैं कि डांस करते समय या जिम करते समय लोगों की अचानक मौत हो जाती है। तो इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च आ रही है कि मौत वो अचानक नहीं होती है, बल्कि खून का थक्का जम जाता है। 25 अस्पतालों में ICMR की स्टडी हुई और इस स्टडी में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि ये खून का थक्का बनने के पीछे वजह जेनेटिक्स हो सकती है, कुछ दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। अचानक मौत के पीछे वजह हार्ट अटैक डायरेक्टली नहीं होती है, बल्कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, उस वजह से हार्ट अटैक वगैरह, दिल का दौरा पड़ जाता है ऐसा। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए, हमारे देश में भी रोगों का बोझ बढ़ता जा रहा, मतलब हर 10 में से 4 युवा फैटी लिवर का शिकार है। यहाँ तक कि बच्चों में भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ रहा। एम्स के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ये चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है कि देश की जनता अपनी सेहत को लेकर सतर्क नहीं है। आजकल उल्टे सीधे खानपान की वजह से युवाओं में फैटी लिवर की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा परीक्षा रद्द होगी। आखिर महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया है, रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के लिए नियम बदल चुके हैं। 1 अक्टूबर से ड्रेस कोड लागू होगा, दिन में 3 बार अटेंडेंस लगाना जरूरी होगा। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी कामयाबी देखिए, JSI ने अरब सागर की गहराइयों में स्केट मछली की नई प्रजाति की खोज की है, इंडियन साइंटिस्ट ने। वहीं राजधानी दिल्ली में अब आसान होगा कारोबार, सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी मिलेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता ओडिशा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे कारोबारियों को कई तरह की राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर निर्माण के लिए सरकार ने स्पष्ट की व्यवस्था, अब 10 बिस्वा जमीन की शर्त अनिवार्य होगी, ये भी नया आदेश जारी कर दिया है। वहीं खबर है हरित ऊर्जा का नया मॉडल बनेगा उत्तराखंड राज्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लागू की पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट नीति। क्या है ये नीति, इस बारे में कुछ और डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने मानी सफाई कर्मियों की मांगे, अब 60 साल तक नौकरी की गारंटी मिलेगी, 15% तक सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो उनकी 13 में से 12 मांगे मान ली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने खुद ये घोषणा की है। हालांकि फिर भी कई जिलों में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है और आर पार लड़ाई की चेतावनी दी, अब मुख्यमंत्री से होगी सीधी बातचीत, ये कहना सफाई कर्मियों का ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, इस महीने सितंबर को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से कुछ खतरनाक भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिसमें प्राकृतिक तबाही से जुड़ी भविष्यवाणी है, वैश्विक युद्ध, एलियन से संपर्क और बेकाबू एआई तकनीक का दावा किया गया। वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर की यूरोप में होगी डायरेक्ट एंट्री, योगी सरकार और जर्मन सरकार के बीच बिजनेस अलायंस को लेकर ये अहम समझौता हुआ है। और उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रूपए तक डायरेक्ट बढ़ चुकी है। इसके अलावा 50 लाख तक बीमा का भी लाभ मिलेगा। यूपी की योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम की शुरुआत की है, जिसके तहत 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ये 8 बड़ी सौगात मिलेगी। अब सैलरी बढ़ोतरी के साथ ही और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय तो लगभग दुगुना तक बढ़ा दिया कई आउटसोर्स कर्मियों का। इसके अलावा ये भी फैसला लिया कि अब कंपनी नहीं कर सकेगी वेतन में कटौती भी ऐसा। वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी आसान होगी विशेष टीईटी, कट ऑफ वगैरह घटा दिया और नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग भी नहीं होगी, तो ये टीईटी में बदले गए नियम यूपी में। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 26 साल बाद फिर वर्दी में आया संत बन चुका एक पूर्व जवान, जिनकी सीआरपीएफ में वापसी हुई है। अब दरअसल 26 साल पहले इनको अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया था किसी कारण से, तो उसके बाद ये संत बन गए थे। तो 26 सालों से इन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और अभी हाल ही में कोर्ट ने इनको वापस पोस्टिंग के आदेश दिए, तो अब ये संत से वापस जवान बने ऐसा। और खबर है उत्तराखंड में हर विकास प्राधिकरण में बनेगा अवैध निर्माण निगरानी डैशबोर्ड, शहरों में सिटी पार्क और पिंक टॉयलेट भी जरूरी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। और उत्तराखंड के देहरादून में देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों पर अब डिजिटल पहरा होगा, ऑनलाइन डैशबोर्ड बनेगा, एक क्लिक पर सारी जानकारियां भी मिलेगी। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के कारगिल में खुला पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब श्रीनगर जाने की जरूरत कम होगी, दूरदराज के लोगों को सुविधा मिलेगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे की सिफारिश की। और मध्य प्रदेश में अब हर सोमवार कलेक्टरों को देनी होगी अपने कामकाज की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया जन विश्वास अभियान पोर्टल। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देगी एमपी सरकार, मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है। इसके अलावा एमपी में भोपाल देवास रोड पर अब बिना रुके टोल टैक्स कट जाएगा गाड़ी का, 100 की स्पीड में गाड़ियां निकलेगी तब भी टोल टैक्स कट जाएगा, इस तरह का नया आधुनिक सिस्टम शुरू कर दिया गया। और 4 सितंबर को एमपी के सीहोर आएंगे कल मुख्यमंत्री मोहन यादव, यहां नई सीजी पावर की नई ट्रांसफॉर्मर यूनिट का शुभारंभ करेंगे, जिससे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जन्माष्टमी के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा, शराब की दुकानें बार होटल वगैरह बंद रहेंगे 4 तारीख को कल। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि पत्नी की कमाई पर भी पति कर सकेगा सवाल, हाईकोर्ट ने इसे अधिकार माना और कहा कि दोनों को एक दूसरे की इनकम जानने का हक है। एक पति पत्नी के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 6 IAS 6 HCS अफसरों के ट्रांसफर किए गए और हरियाणा कर्मचारियों को OPS यानी पुरानी पेंशन योजना पर भी बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने 3 श्रेणियों के लिए खोला पुरानी पेंशन का रास्ता, 46 याचिकाओं का निपटारा किया। वहीं हरियाणा के सोनीपत में हुई किसानों की महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि चीनी के दाम बढ़े तो गन्ने का भाव भी 600 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए ऐसा, ये हरियाणा में किसानों की मांग है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर बिजली इंजीनियर और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, OPS नहीं मिलने पर विरोध जताया, आउटसोर्स कर्मियों के समायोजन की मांग पर रैली भी निकाली। और उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया, धारा 27 के तहत ट्रांसफर के लिए निर्देश जारी हुए, 1 सप्ताह में मांगी गई लिस्ट। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सरकारी नौकरी खबर आ रही, रेलवे में 4,471 पदों पर भर्ती निकली, फ्रेशर्स को मौका होगा, लास्ट डेट 27 सितंबर रहेगी। और SSC की JE जूनियर इंजीनियर भर्ती की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, 1,748 पदों पर आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 22 सितंबर है। बैंक ऑफ इंडिया में भी 205 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 25 सितंबर रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हुआ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले की नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी इस नए कानून से। वहीं हिमाचल में रेडियोग्राफर और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। और हरियाणा में कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्रों को एक और मौका मिलेगा, 15 सितंबर तक लास्ट डेट बढ़ाई गई और गेट 2027 के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को प्रमोशन या बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है और कर्क राशि वालों का प्रॉपर्टी विवाद भी सुलझेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के बीचों बीच
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।